नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां जश्न और खौफ के बीच की लकीर बहुत धुंधली है।
हम बात कर रहे हैं लूसी फोली के बेहद कामयाब थ्रिलर द गेस्ट लिस्ट की।
हाँ, जिन्हें आज के दौर की एगाथा क्रिस्टी भी कहा जाता है। उनकी खासियत ही यही है, मतलब किसी सुनसान जगह पर कुछ किरदार
और उनके गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव।
बिल्कुल। और द गेस्ट लिस्ट तो इसका एक क्लासिक उदाहरण है, एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री, लेकिन एक पूरे द्वीप पर।
और क्या द्वीप है, मतलब आयरलैंड के तट से दूर एक वीरान तूफानी जगह।
नाम भी अजीब है, कॉर्मोरेंट आइलैंड।
हाँ, और वो जगह ही अपने आप में किरदार बन जाती है। ऊंची ऊंची चट्टाने, दलदल और वो पुरानी डरावनी कहानियां।
और ऐसी मनहूस जगह पर हो रही है साल की सबसे बड़ी शादी।
बिल्कुल। एक तरफ हैं कामयाब मैगजीन पब्लिशर जूल्स कीगन और दूसरी तरफ टीवी के चमकते सितारे विल स्लेटर।
बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है ना?
लगता तो है, लेकिन कहानी की पहली परत हटाते ही समझ आता है कि जो चीजें जितनी परफेक्ट दिखती हैं उनके अंदर उतनी ही दरारें होती हैं।
सही कहा। ये शादी दो लोगों का मिलन कम और एक जाल ज्यादा लगती है, जहां हर मेहमान अपने राज के साथ फंसा हुआ है।
और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि ये सीधी साधी मर्डर मिस्ट्री नहीं है।
अच्छा।
हाँ, शादी की रात एक भयंकर तूफान आता है, बत्तियां गुल हो जाती हैं और अंधेरे में एक चीख।
और जब रोशनी आती है तो एक लाश मिलती है।
पर लूसी फोली यहाँ एक कमाल का दाव खेलती हैं। वो हमें ये नहीं बताती कि कातिल कौन है।
तो फिर
वो हमसे पूछती हैं कि मरा कौन है।
अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब रहस्य ये नहीं कि किसने मारा, बल्कि ये कि कौन मरा।
बिल्कुल। और इसका जवाब जानने के लिए हमें उस गेस्ट लिस्ट को खंगालना होगा। ये मेहमानों की लिस्ट कम और संदेहों के लिए ज्यादा है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो परफेक्ट जोड़ा है ना?
हाँ, विल और जूल्स, मतलब सतह पर तो एकदम सपनों की जोड़ी। विल हैंडसम है, मशहूर है,
और जूल्स स्मार्ट, सफल, जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए।
बिल्कुल। उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी कहेगा कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
पर क्या वाकई ऐसा है? मुझे लगता है कहानी का सबसे बड़ा धोखा ही विल का किरदार है। वो समाज के उस आदर्श मर्द की तस्वीर है।
हाँ, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कामयाब, आकर्षक, आत्मविश्वास से भरा हुआ।
पर ये सब एक मुखौटा है ना, जिसके पीछे एक बहुत खतरनाक नार्सिसिज्म छिपा है, दूसरों को कंट्रोल करने की आदत।
सही कहा। ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है, और डरावना इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं।
कोई उनपे शक ही नहीं करता, शायद जूल्स भी नहीं। वो इस परफेक्ट जिंदगी को इतनी शिद्दत से चाहती है कि वो सच देखना ही नहीं चाहती।
और हर चमकते सितारे के अतीत में कुछ काले धब्बे तो होते ही हैं। विल के अतीत का सबसे बड़ा राज जुड़ा है उसके बेस्ट मैन जोनो से।
जोनो, वो दोस्त जो हमेशा विल की परछाई में जिया है, स्कूल के दिनों से।
और वो सिर्फ परछाई में नहीं जी रहा, बल्कि एक भयानक बोझ के तले भी दबा हुआ है। स्कूल के दिनों की एक घटना जिसका राज सिर्फ वो और विल जानते हैं।
और वो राज शादी में बाहर आने लगता है।
हाँ, रिहर्सल डिनर पर नशे में दिया गया उसका भाषण, मतलब वो पूरे जश्न के माहौल में जहर घोल देता है।
वो सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहता।
नहीं, लेकिन उसके शब्द हवा में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि दूल्हा उतना भी शरीफ नहीं है जितना वो दिखता है।
वो भाषण कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो उस परफेक्ट शादी के चमकीले गुब्बारे में पहली सुई चुभोता है।
सही कहा। वो सिर्फ नशे की बकवास नहीं है, वो अतीत की आवाज है जो कह रही है, मैं अभी जिंदा हूँ।
और अतीत से जुड़ी एक और किरदार है, ओलिविया,
जूल्स की छोटी सौतेली बहन और उसकी ब्राइड्समेड। वो पूरी शादी में एक भूत की तरह है, चुपचाप सहमी हुई।
और उसके शरीर पर वो ताजा जख्मों के निशान, वो एक अनकही कहानी की तरफ इशारा करते हैं।
बिल्कुल। उसकी चुप्पी ही शायद कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। वो किसी से बहुत डरी हुई है।
और इन करीबी लोगों के अलावा एक बाहरी किरदार भी है जो हमारी आंखें और कान बन जाती है।
हाना, वो अपने पति के साथ शादी में आई है और उसे पहले पल से ही महसूस होता है कि यहाँ मामला गड़बड़ है।
उसे वो गुमनाम नोट भी तो मिलता है।
हाँ, ऐसा मत करो, ये एक गलती है। वो समझ नहीं पाती कि ये किसके लिए, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि इस चमक दमक के पीछे कोई भयानक सच छिपाए।
और यही पर लेखिका का क्राफ्ट दिखता है, वो हमें किसी एक किरदार के साथ नहीं रखती।
हाँ, वो हमें एक किरदार के दिमाग से निकालकर दूसरे के दिमाग में डाल देती हैं।
इसका असर ये होता है कि पाठक बहुत बेचैन रहता है। आप जूल्स के साथ हैं तो विल पर शक होता है, जॉनो का पक्ष सुनते हैं तो लगता वो कुछ छिपा रहा है।
सही बात है, हम किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। हम भी उन मेहमानों की तरह ही उस द्वीप पर फंस जाते हैं जहाँ हर चेहरा एक पहेली है।
और फिर आता है कहानी का वो मोड़, वो चरम बिंदु,
शादी का दिन और उसके साथ वो भयानक तूफान। ये सिर्फ मौसम का तूफान नहीं था,
ये किरदारों के अंदर दबे राज का भी तूफान था।
वो दृश्य बहुत ही नाटकीय है। मार्की के अंदर जश्न चल रहा है और बाहर कुदरत का कहर,
और फिर अचानक
बत्तियां गुल,
पूरा अंधेरा,
अफरा तफरी,
और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर सारे सच बाहर आने लगते हैं। जूल्स को पता चलता है कि विल ने उसे धोखा दिया है,
पर सबसे भयानक सच तो ओलिविया बताती है।
हाँ, वो अपनी बहन को बताती है कि कुछ महीने पहले विल ने ही उसका यौन उत्पीड़न किया था।
ये वो पल है जहाँ सारे मुखौटे उतर जाते हैं। वो अंधेरा एक प्रतीक बन जाता है। जैसे ही समाज की बनाई रोशनी हटती है, किरदारों की असली डरावनी शक्ल सामने आ जाती है।
बिल्कुल, और इसी बीच जॉनो भी विल से भिड़ जाता है।
उसे उनके स्कूल के दोस्त डारा की मौत का जिम्मेदार ठहराता है।
और उसी शोर, तूफान और अंधेरे में
एक चीख गूंजती है,
और जब लाइट आती है तो बाहर चट्टानों के पास एक लाश मिलती है।
मरने वाला कोई और नहीं बल्कि दूल्हा विल स्लेटर है। अब सवाल ये था कि उसे किसने मारा,
क्योंकि नफरत करने वालों की तो पूरी लिस्ट थी। ओलिविया, जॉनो, जूल्स, कोई भी हो सकता था।
और जवाब भी उतना ही उलझावा है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था।
तो फिर
ये एक तरह का सामूहिक न्याय था। जॉनो ने विल पर हमला करके उसे चट्टान के पास घायल छोड़ दिया था,
लेकिन उसे दलदल में आखिरी धक्का किसी और ने दिया था।
हाँ, वेडिंग प्लानर ईफा ने।
ईफा ने क्यों?
और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। ईफा असल में उसी लड़के डारा की बहन है जो सालों पहले स्कूल में विल की बुलिंग की वजह से मर गया था।
अरे,
तो वो सालों से इंतजार कर रही थी।
हाँ,
विल अपने पैसे और पहुंच की वजह से तब बच गया था, और ईफा ने जानबूझकर इस शादी का आयोजन इस द्वीप पर किया था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके।
तो ये एक व्यक्ति का बदला नहीं था, ये विल के कई पीड़ितों का मिलकर लिया गया प्रतिशोध था।
पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो इसका अंत है,
जब पुलिस आती है।
हाँ, तो सभी मेहमान, जूल्स, ओलिविया, जॉनो, हन्ना, सब मिलकर एक कहानी गढ़ते हैं। वो ईफा को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं।
वे कहते हैं कि विल तूफान में फिसल कर गिर गया।
एक तरह से वो सब उस न्याय में भागीदार बन जाते हैं जो व्यवस्था उन्हें कभी नहीं दे पाती।
और ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है ना, कि जब कानून और समाज किसी ताकतवर अपराधी को सजा देने में नाकाम हो जाएं, तो क्या पीड़ितों को अपना न्याय खुद करने का हक है?
ये इस उपन्यास का सबसे गहरा सवाल है, और यही हमें नारी एकजुटता की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर भी दिखती है।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, कहानी में पुरुषों के रिश्ते जैसे विल और जॉनो के धोखे और अपराध बोध पर टिके थे,
जबकि महिलाएं, जूल्स, ओलिविया, हना, जो शुरुआत में एक दूसरे से अनजान थीं,
वो त्रासदी के पल में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। जूल्स अपने धोखेबाज पति की बजाय अपनी पीड़ित बहन पर भरोसा करती है और उसे बचाने का फैसला करती है।
तो अंत में ये कहानी हमें उस चमक तमक के पीछे झांकने पर मजबूर करती है जिसे हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। ये याद दिलाती है कि परफेक्ट जिंदगी का मुखौटा अक्सर सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है।
और ये हमें उस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब व्यवस्था न्याय देने में विफल हो जाती है तो न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या न्याय सिर्फ कानून की किताबों में मिलता है या उसका कोई नैतिक रूप भी होता है? ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।